भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 10 श्लोक संख्या 9 कैंटो 6 चैप्टर 10 एंड टेक्स्ट नंबर 9। एतावान अव्यय धर्म पुण्य श्लोके उपासिता भूया भूता शोका हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। एतावान् अव्यय धर्म पुण्यश्लोके उपासिता भूतशोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति एतावान् अव्यय धर्म पुण्यश्लोके उपासिता यः भूतशोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति
पढ़िए।
उपासिता हितावानवयो धर्मम् अन्यजोगे उपासिता भूतश्लोक हितावानवयो धर्मम् माताजी एतावान, जोर से बोलना सब लोग, इतने अव्यय अविनाशी धर्म धार्मिक नियम पुण्य श्लोके अत्यंत पवित्र कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा उपासिता मान्य यह जो भूत जीवों का शोक दुख से हर्षाभ्याम सुख से आत्मा मन सोचति पश्चाताप करता है हृष्यति प्रसन्न होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख से प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना जाता है। आप दोहराइएगा मेरे साथ, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उसके सुख से प्रसन्न होता है तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना जाता है। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद जी कहते हैं, प्राकृतिक गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो। आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरों के सुख तथा दुख को अपना ही मानना चाहिए। इसी आधार पर बौद्धों की अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है, अहिंसा परमो धर्म। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृथा पशु हत्या को बंद कराना था, इसलिए उन्होंने उपदेश किया कि अहिंसा परम धर्म है। एक ओर कोई पशुओं का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कहलाए, ऐसा संभव नहीं। यह सबसे बड़ी धूर्तता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, हिंसा मत करो, किंतु धूर्त लोग अपने को ईसाई बताकर हजारों कसाई घर चला रहे हैं। इस श्लोक में ऐसी धूर्तता की निंदा की गई है। मनुष्य को दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना, उन्हें दुखी देखकर दुखी होना चाहिए। इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानववादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानवता के सुख का समर्थन कर रहे हैं। इस श्लोक में इसकी संतुष्टि नहीं दी गई। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। चाहे मनुष्य हो, पशु या वृक्ष, ये सभी जीवात्माएं भगवान की संतानें हैं। भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेयो मूर्तयो संभवन्ति ते या तासा ब्रह्ममयो निरहंग बीज प्रतपिता। एक उन्ती पुत्र समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने के कारण संभव है। मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। इन जीवात्माओं में भिन्न भिन्न रूप उनके वायु वस्त्र हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्षपात नहीं करना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को ईश्वर का अंश मानता है। गीता में भी कहा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण एक अभिहस्तनी सुनी चौ स्वपाक्य चौ पंडिता समदर्शिनो। यथार्थ ज्ञानी विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते चंडाल में समदर्शी होते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। दिव्यत प्राप्त पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में संभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानव है, क्योंकि दूसरे को दुखी देखकर शोक करता है, अन्यों को प्रसन्न देख करके स्वयं प्रसन्न होता है। वैष्णव पर दुख दुखी होता है। वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव दुखी होता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है। अमज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मितंगेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषवानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। यं पब्रजंत मनुपेतम वेदकृत्यं द्वैपायनो विराकातर जुहाव पुत्रेति तन्मयितया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरु कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा है उसी पर मैं कुछ बोलता हूं। यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों को दुख देख के दुखी सुख देख के सुखी होता है वृत्रासुर देवताओं से बात कह रहा है। प्रसंग है वृत्रासुर का। दधीच मुनि से हड्डी मांगने के लिए देवता लोग आए हैं। दधीच मुनि कहते हैं ये श्लोक यहां पर, क्योंकि वृत्रासुर को मारना है और भगवान विष्णु ने देवताओं को उपाय बताया है कि अगर दधीच मुनि अपनी हड्डी दे दें और उनकी हड्डी से वज्र बने और वो बजरा बटासुर के ऊपर फेंको तो बटासुर मर सकता है। बटासुर पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु हैं। एक बार विमान से जा रहे थे आकाश मार्ग से, भगवान शंकर पार्वती को अपनी जंगा में बिठा करके कीर्तन कर रहे थे तो देखा महादेव देवों के भी देव और पत्नी को जंगा में बिठा रखा है। तो अनाप शनाप बातें कहने लगे। शिवजी ने तो कुछ कहा नहीं, वो कीर्तन में मस्त थे। पार्वती ने श्राप दिया कि राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म हो। इसे महाराज चित्रकेतु वृत्तासुर रूप में बन के आए हैं। इनका शरीर दैत्य का है लेकिन हृदय में भगवान की प्रति भक्ति है। और दधीचि मुनि के पास देवता लोग उनकी अस्थि मांगने के लिए आए हैं। तो दधीचि मुनि देवताओं को उपदेश कर रहे हैं। पहला उपदेश क्या किया, देवताओं ने कहा अपनी हड्डी हमको दे दो। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा जी सीताराम रक्षा हनुमान जी श्री श्री गौर नेताए श्री प्रभुपाद की। दधीचि मुनि से कहा अपनी हड्डी दे दो, भगवान विष्णु ने कहा है। कोई अपनी हड्डी देगा? यहां एक दिन भगवान की सेवा के लिए अगर किसी को कहो एक दिन दे दो, कुछ पैसा दे दो, कुछ समय दे दो, तो कितना टाल मटोल लोग करते हैं। लेकिन यहां पर दधीचि मुनि कह रहे हैं मैं हड्डियां दूंगा, लेकिन उपदेश भी करते हैं। चौथे श्लोक में एक जगह उपदेश किया है, जीजी विष्णुनाम जीवानाम आत्मा पृष्ठ इहेप्सित कह उत्साह तंग दातुं भिक्ष माणाय विष्णवे। जीव को ये शरीर इतना प्यारा होता है, पहले तो शरीर की तो बात बहुत दूर की है, शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उनको देने में आदमी टाल मटोल करता। लेकिन यहां पर दधीचि मुनि कहते हैं देवताओं से अगर भगवान विष्णु भी आए और जीव से कहें कि ये शरीर हमारा है, हमने आपको दिया था, बहुत दिन हो गया, वापस करो। भिक्ष मांगाए विष्णु है, अगर विष्णु भी भीख मांगे, जबकि शरीर के मालिक कौन है? भगवान। उन्होंने कुछ दिन हमको दिया, खूब खा पी लिया, घूम लिया, वापस करो। हम हॉस्पिटल में सड़ जाएंगे लेकिन मरना नहीं चाहते। कमा में पड़े हैं फिर भी कब सांस आएगी, सड़ गए अंदर से पूरा। और कई जगह तो आपने देखा होगा लोगों के शरीर की हालत ऐसी हो गई है फिर भी भगवान का भजन नहीं करते। राजनीति में आपने देखा होगा एक राजनेता है, उनका तो मुंह ही टेढ़ा हो गया है, अभी भी भाषण ही देते थे। नाम नहीं बताएंगे क्योंकि मानहानि का मुकदमा दायर करते। क्यों टेढ़ा हो गया, अभी भी वोट दो वोट दो। तो भगवान विष्णु भी अगर कहें अरे बहुत दिन हो गए वापस करो अभी, तो जीव क्या कहता है, ये कचरा पट्टी शरीर का क्या करोगे आप, ये मल मूत्र का भांड है, सब कचरा भरा है अंदर, आपका शरीर दिव्य है भगवान, ये कचरा पट्टी ले जाके क्या करोगे, उल्टा उपदेश दे, क्योंकि देने का मन नहीं, ऐसा कह दिए। शरीर बहुत प्यारा होता है। लेकिन दधीचि मुनि यहां पर कह रहे हैं कि मैं आपको हड्डी दूंगा क्योंकि इसमें भगवान की प्रेरणा है और मेरी हड्डी से वृत्तासुर मारा जाएगा, आप सुखी होगे। इसलिए श्लोक में यहां पर कहते हैं कि जो दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होता है। असली प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। यहां पर श्लोक का तात्पर्य है दया से। दूसरों को दुखी देख के दुखी होना और सुखी देख के सुखी होना, ये भगवान के भक्त का लक्षण है। लेकिन समाज की स्थिति इस वक्त ठीक उल्टी है। दूसरे के सुख को देख के दुखी और दूसरे के दुख को देख के सुखी, ये स्थिति। आजकल जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमराइज, पैरालाइज अटैक, ज्यादातर किससे हो रहे हैं? दूसरे से इतना हम जलते हैं कि वो अपने से दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, मैं इधर ही रह गया, नस फट जाती है सोच। कुत्ता देखा आपने? एक कुत्ता अंधेरी का हो, एक पार्ला का, पहली बार अगर मिले हाथ मिलाते हैं, समाज में प्रैक्टिकली देखिए, भागवत के आश्रय में हम कह रहे हैं, आदमी की स्थिति कैसी हो गई है। अगर कोई नए आदमी को कोई नया चेहरा देखेगा, हरे कृष्ण नमस्कार, ऐसा घूर के वो उसको, यह कुत्ता लोग सूंघते रहते हैं, कुत्ता टांग से लेकर मुंह तक सूंघेगा, आदमी भी आदमी को सूंघता है, ये हालत। दुखी हैं और ज्यादातर दुखी किधर? पड़ोसी से बहुत दुखी है, भाई भाइयों में भी है। एक भाई ने ज्यादा उन्नति कर दी, दूसरा नीचे रह गया। आपने देखा होगा एक बार एक पॉलिटिकल लीडर को उसके भाई ने गोली मार दी सुबह सुबह। तो ये क्या है? ये अपने भाई के सुखी देख के सुखी है, अपने भाई के सुख को देख के दुखी था वो। इसे सुबह नाश्ते के टाइम पर रिवॉल्वर लेके गया। ये उच्च वर्गों में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनमें भी प्रैक्टिकली परिवार में चीजें पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सत्संग और भक्ति का अभाव है। आजकल भगवान की भक्ति भी, ज्यादातर लोग जो भगवान का भजन करते हैं उस भजन में भी उद्देश्य एक ही है कि कैसे अपने पड़ोसी को, अपने संबंधी को गिराया जाए। एक शिव भक्त की कथा आती है। शिव जी की तपस्या करता है, शिव जी ने कहा वर मांगो, लेकिन उसके मन की बात जानते थे कि पड़ोसी से बहुत जलता है। तो शिव जी ने कहा हम आपसे प्रसन्न हैं, वर मांगो, लेकिन कंडीशन रख दी, जो भी मांगोगे मैं पड़ोसी को दुगुना दे दूंगा। अब ये आया था तपस्या करने इसलिए कि पड़ोसी को डाउन करूं, और शिव जी ने कहा मैं उसको डबल दे दूंगा बिना तपस्या के। तो इसे सोच विचार के कहा कि पड़ोसी का कैसे नुकसान किया जाए। तो शिव जी से कहा डबल दोगे तो ठीक है, हमारी एक टांग तोड़ दो, तो हमारी एक टूटेगी तो पड़ोसी की दो टूटेंगी। डबल मांगा, क्या मांगा? टांग तोड़। जितने लोग भजन करते हैं क्या सचमुच भगवान को पाने के लिए? मनुष्याणांग सहस्रेशु यतति कश्चित सिद्धये यतदामपि सिद्धानां कश्चित मावेति तत्त्वतः। बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रबदते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। जितने लोग भजन करते हैं, किसी भी देवता की उपासना करते हो, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
अपने से दूसरे को दावन करो।
पुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है, गरीब ब्राह्मण की। ब्राह्मण बहुत गरीब है, भगवान शिव की आराधना की और शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा वर मांगो। कहा मैं बहुत गरीब हूं, अमीर होना चाहता हूं। तो शिव जी ने कहा ये लो घंटी, ये घंटी ले जाओ, घर में टांग देना, जब भी जो चीज की जरूरत हो घंटी बजाना, तुरंत आ जाए। लेकिन कहा तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा घंटी बजाने से। अभी ब्राह्मण गरीब तो है लेकिन जलता है दोस्त अपने पड़ोसी से। तो घंटी तो ले आया लेकिन टांगा नहीं, घर के कोने में रख दिए। विचार किया बजाऊंगा नहीं, बजाऊंगा इसका मतलब मेरा पड़ोसी को डबल जाएगा, मैं काम करूंगा लेकिन घंटी नहीं बजाऊंगा। घंटी को कोने में रख करके नौकरी ढूंढने चला गया और नौकरी मांगने लगा। बहुत दिन हुए, कई महीने बीत गए, इसको काम नहीं मिला लेकिन घर भी नहीं आया वो घंटी के चक्कर में। और इधर ब्राह्मणी बहुत दुखी हो गई और घर में कुछ खाने को नहीं, भूख प्यास से व्यथित हो गई बहुत। एक दिन ब्राह्मणी ने विचार किया मैं जरा अपने घर को साफ करूं, मेरे पति जो पहले भिक्षा करके लाते थे हो सकता है अनाज के दाने घर के किसी न किसी कोने में पड़े हों, गेहूं चावल दाल के दाने, तो मैं झाड़ू लगा के कचरा इकट्ठा करूं, कचरे में से उन दानों को निकालूं, फिर उन दानों को उबाल करके खाऊं। तो झाड़ू लगा रही थी तो कमरा साफ करते करते उस कमरे में पहुंची जिस कमरे के कोने में घंटी रखी हुई थी। ब्राह्मणी ने विचार किया घंटी को हटा करके उधर भी साफ कर दूं। और ब्राह्मणी ने घंटी उठाई, तन घंटी बजी, आवाज आई क्या चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा दो महीने से भूखी हूं, छप्पन भोग लाओ पहले। जैसे कहा सुंदर छप्पन भोग की थाली लगती। ब्राह्मणी ने भोजन किया, तृप्त हुई, विचार किया घंटी के बजने से आवाज आई है, फिर बजा के देखो तो फिर बजाई टन, फिर आवाज आई अब क्या चाहिए? ब्राह्मणी ने कहा एक बंगला बना दीजिए। तुरंत ही बंगला बन गया लेकिन पड़ोसी के डबल बंगले बन गए। फिर बजाई कहा हम मेरे पति बहुत गरीब हैं, काम मांगने गए हैं तो हमको बहुत पैसा दे दो। घंटी ने कहा बोलो करोड़, ठीक है करोड़, तुम पड़ोसी को दो करोड़। खूब मांगा बंगला घोड़ा गाड़ी सब, और ये ब्राह्मण को काम नहीं मिला, ये वापस घर आया। देखा तो जिस छोटी सी घर में रहता था वहां महल बना हुआ है। घर के अंदर आया, ब्राह्मण से कहा ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने कहा आपकी कृपा से तो हुआ, जो घंटी आप बनारस से लाए थे उसी का कमाल है। तब ब्राह्मणी को डांटा मूर्ख गजब कर दिया तूने, क्या मैं वो घंटी नहीं बजा सकता था? मैंने वो घंटी इसलिए नहीं बजाई, हमारे पड़ोसी को डबल चला गया हर माल। ब्राह्मणी ने कहा हम दो आदमी हैं, हमारे लिए भगवान ने इतना देकर पड़ोसी को दुगुना तिगुना चले जाए तो जाने दो। नहीं, मैं पड़ोसी को सुखी नहीं देख सकता, इधर ला घंटी। फिर घंटी बजाई, घंटी ने कहा क्या चाहिए? कहा जल्दी से मेरी एक टांग तोड़ दो। पड़ोसी की दो टूट गई। ब्राह्मण ने विचार किया मैं तो एक टांग को भी चल लूंगा बैसाखी पर लकड़ी लगा के, इसकी दो टूटेंगी। फिर घंटी बजाई, घंटी बोली क्या? कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। ब्राह्मण ने विचार किया मैं तो एक आंख से भी देख लूंगा, मेरा पड़ोसी बिल्कुल अंधा होना चाहिए। दो तीसरी बजाई, घंटी बोली क्या? कहा मेरे घर के बाहर एक कुआं खोद दो। ब्राह्मण ने विचार किया मेरी तो एक आंग एक टांग है, मैं तो क्रॉस कर जाऊंगा, मेरा पड़ोसी जब अंधा रहेगा दोनों टांग नहीं रहेंगे तो खड्डे में गिरेगा। तो उसने एक खड्डा बोला, उधर डबल खड्डा हो गया, पड़ोसी बाहर को आ रहा था सीधे गड्ढे में चला। ब्राह्मण ने कहा आज मेरी मन्नत पूरी हो गई घंटी लाने। ये प्रसंग आता है भागवत के प्रथम स्कंध में, द्वितीय श्लोक है मंगलाचरण में, सुखदेव गोस्वामी व्यास जी कहते हैं, शुद्ध गोस्वामी पाद, कौन सा श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवत निर्म शराणांग सतांग वैदव वास्तव मत्र, नहीं, धर्म प्रोजित कैतवत निर्म शराणांग सतांग। शुद्ध गोस्वामी मंगलाचरण में कहते हैं ये भगवान की कथा जो भागवत कथा है ये जलने वालों का शास्त्र नहीं है। निर्मशराणांग सतांग ये निर्मत्सद लोगों का शास्त्र है, मत्सर का नहीं है। मत्सर मतलब जो दूसरे से जलते हैं, और मत्सर को आप मच्छर भी कह सकते हो। ये शास्त्र भगवान की कथा मच्छरों के लिए नहीं है, ये निर्मत्सरों के लिए है। इसलिए भगवान की कथा सुनने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कोई ये कामना करे कि मैं किसी का बुरा चाहूं, भगवान की कथा किसी का बुरा नहीं करती, ये मंगलाचरण होता। लेकिन संसार में ऐसा देखा गया है, इसलिए सबके प्रति दया भाव। रामायण में शबरी जी का प्रसंग आता है, भक्तमाल में रामायण वाल्मीकि रामायण के प्रसंग को लिखा है। शबरी जी 9 साल की हैं तो इनकी शादी तय हुई है, तो ये राजा की लड़की थी, भील राजा की, जंगली लोग थे, जानवरों का शिकार करते। तो एक दिन शबरी ने अपनी मां से पूछा कि मां हमारे बाड़े में खेत में जो चारों तरफ बाउंड्री है और बहुत बड़ा गेट लगा है, उस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे जानवर बंधे हुए हैं। शबरी जी की शादी तय हुई तो इनके पिता ने विचार किया कि मैं समस्त भील समाज को बुलाऊं और उनको सुंदर सुंदर जानवरों का मांस परोसूं। तो विभिन्न जंगली जानवरों को, बारहसिंगे जितने भी जंगली जानवर होते हैं, सबको पकड़ पकड़ करके उस बाउंड्री के अंदर बंद किया है। और ये लड़की ने अपनी मां से पूछा कि मां इतने सारे जानवर किस लिए? तो शबरी की मां ने कहा बेटी तुम्हारी शादी है ना, इसलिए इनको काटा जाएगा, तरह तरह का मांसाहारी भोजन बनेगा, मेहमानों को परोसा जाएगा, क्योंकि हम लोग भील समाज से ताल्लुक रखते हैं। तब शबरी जी को उन जानवरों पर दया आई, तो अर्ध रात्रि में शबरी जी ने विचार किया शादी 2 लोगों की और इतने लोगों की जाने जाएंगे, तो अर्ध रात्रि में जाकर के जो बाड़ा था बाउंड्री उसका, जो मेन गेट था जहां से जानवर अंदर बाहर जाते थे, उस मेन गेट को खोल दिया शबरी ने। तो हजारों जानवर उस बाउंड्री के गेट से बाहर जाने लगे, और ये गेट पर खड़ी थी तो सब जानवरों ने शबरी उस लड़की को आशीर्वाद दिया, बेटी तूने हमको बाड़े से मुक्त किया है, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तू इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगी। किसी भी जीव की दया का फल क्या है? दया छोटी मोटी चीज नहीं है, किसी के दुख में दुखी सुखी होना ये कोई छोटा मोटा लक्षण नहीं है, ये भगवत प्रदत्त लक्षण होता है। जो लोग दूसरे के सुख को देख के दुखी, दुख को देख के सुखी होते हैं, ये मनुष्य का लक्षण नहीं, ये राक्षस का लक्षण है। लेकिन समाज में देखा जाता है, साधारण लोगों में तो ये होता ही है, साधु संतों में भी ये भाव देखा गया। जो लोग भगवान का भजन करते हैं रात दिन, घर बार छोड़ चुके हैं, भगवान मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, उन लोगों में भी ये ईर्ष्या द्वेष देखा गया है। हमारा 25 साल का अनुभव है, प्रैक्टिकल। ये बहुत बड़े दुख की बात हमारे समाज के लिए आज है। ये प्रसंग के आश्रय में हम कहने का अधिकार, ऐसा मैं सोचता हूं, कहना चाहिए। दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तब लगी दया न छानिए, जब लगी घट में प्राण। भक्तमाल के एक संत है मलुकदास जी, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते उनकी वैष्णव में, लेकिन उनका एक पद बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का मदीना द्वारिका बद्री अरुकेदार, बिना दया सब झूठ है कहे मलूक विचार। कोई व्यक्ति बद्रीनाथ चारों धामों की यात्रा करे, भागवत सुने, कीर्तन करे, लेकिन अगर उसके अंदर दया नहीं है तो वो सब बेकार। हम एक बार पूना में कथा कर रहे थे स्वारगेट में, उसके पास एक जगह है करीब 8-10 किलोमीटर आगे, वहां एक साउथ इंडियन सेठी जी का बहुत बड़ा बालाजी मंदिर बनाया। आप गए उधर? बहुत बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने, तिरुपति तिरुमाला का एकदम डुप्लीकेट बनाया है, डिट्टो। उतना ही बड़ा लड्डू, वैसा ही प्रसाद, वही पूजा पद्धति, सब ऐसे मिलेगा। तो जो हमको वहां ले गए थे कोई गुप्ता जी, तो हमने उनसे कहा कि ये सेठ जी क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा इनका पोल्ट्री का धंधा है, ये मुर्गी काट के बेचते हैं। तो हमने उनसे कहा इस व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होगा, ये एक बालाजी क्या 1,00,000 बालाजी का भी मंदिर बना ले, अगर ये मटन बेच करके मुर्गी का मुंडी काट के ये मंदिर बनाता है तो इसकी मुंडी सही सलामत नहीं है, जाने वाली है। बकरी पाती खात है ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। बकरी बेचारी हरी घास खाती है, मुंडी झाड़ दिया, जो बकरी की मुंडी खाता है उसकी क्या झाड़े हैं, पूरा ही झाड़ दो। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में मांस शब्द का उल्लेख किया है, बद का। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का संवाद है, मांस शब्द का संधि विच्छेद किया है, मां मतलब मैं, स मतलब वह। जो व्यक्ति मांस खाता है, जिसका वो मांस खाता है, वो जीव उससे कहता है तूने आज मुझको खाया, मैं कल तुझको खाऊंगा। मां मतलब मुझे, स मतलब वह, अब तेरी बारी है। इसलिए कभी भी किसी का बद और मांस भक्षण। भीष्म पितामह तो यहां तक उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कोई व्यक्ति खूब भागवत करे, कराए, मंदिरों में दान दे, भक्तों की सेवा करे, वृंदावन में कुटिया बना करके रहे, लेकिन अगर वो मांस भक्षी है, मांस भक्षी की कभी भी गति नहीं होती है, महाभारत लिखा है। आजकल लोग अंडे को भी वेजिटेरियन कहते हैं। मांस खाने से भी बड़ा पाप है अंडा खाना। अंडा क्या है? मुर्गी का गर्भ होता है, किसी गर्भवती स्त्री के गर्भ पर आप प्रहार करें या मारें तो कितना कठोर कानून है। तो अंडा खाना मतलब किसी के गर्भ का भक्षण हम कर रहे हैं, ये महापाप है। इसलिए संडे हो या मंडे मत खाओ अंडे। एडवर्टाइज आता है ना, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, संडे हो या मंडे मत खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे यमराज के डंडे। मांस खाना पाप बताया है भगवान ने। दो तरह की सृष्टि बनाई है, एक है मांसाहारी सृष्टि, एक है शाकाहारी। शाकाहारी सृष्टि की पहचान अलग है, मांसाहारी की अलग है। शाकाहारी प्राणी के दांत गोल होते हैं, मांसाहारी के नुकीले होते हैं। कुत्ते के दांत देखे, बिल्ली नुकीले, शियार नुकीले। शाकाहारी में गाय के दांत गोल, बैल के गोल, हमारे गोल। मनुष्य की प्रकृति शाकाहारी प्राणी से मिलती है, कहीं से भी आप ले लेते। मांसाहारी प्राणी मुंह खोल करके सांस लेते हैं और शाकाहारी प्राणी नाक से सांस लेते हैं। कुत्ता देखा, और शाकाहारी, हम शाकाहारी, बैल। शाकाहारी प्राणी गुटुर गुटुर करके घूंट से पानी पीता है, मांसाहारी पानी चाट के पानी पीता है। शेर को आप पानी पीने को दो, चाटेगा ऐसा। कुत्ता चाट के पानी पिएगा, बिल्ली चाट के पानी पिएगा, जितने भी मांसाहारी प्राणी है चाट के पानी पीते हैं। शाकाहारी पानी घूंट के पानी पीते हैं, गाय भैंस बैल जितने भी शाकाहारी। शाकाहारी प्राणी की आंत 7 फुट की होती है, और नहीं, शाकाहारी की 32 फुट और मांसाहारी की 8 फुट। मांसाहारी प्राणी जितने होंगे उनके पेट आपको पिचके हुए मिलेंगे ऐसे। कुत्ते का पेट देखा, बिल्ली का, शाकाहारी का भरा हुआ मिलेगा। उसकी आंत 32 फुट की होती है और मांसाहारी की 8 फुट की होती है। नापना है तो किसी का पेट फाड़ के देख लो, अपना तो नहीं फाड़ सकते, कोई कुत्ता बिल्ली मिले तो फाड़ के देख ले। और कई दफे एकदम परफेक्ट चाहिए तो मांस भक्षण किसी का वध करना महापाप बताया है। कई लोग जिज्ञासा करते हैं, जो लोग शाकाहारी हैं वो भी तो हत्या करते हैं। हम सब्जी खाते हैं वो भी खेतों में उगती है, फल खाते हैं पेड़ में होता है, तो ये सब खाने की परमिशन हमको भगवान देते हैं। हम लोग वैष्णव लोग जो खाते हैं उनके पास लाइसेंस है, और जो मांसाहारी लोग हैं वो विदाउट लाइसेंस का खाते हैं। हमारे पास लाइसेंस है ना शाकाहारी का, गीता का 9वां अध्याय, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति पहित बसनामि च प्रेतात्मना। भगवान को अगर हमको मांस खाने के लिए बोलना होता तो गीता के श्लोक में बोल देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम गोस्तम लिखा, पत्रम पुष्पम फलम मटनम, या पत्रम पुष्पम फलम मछलिम अंडम कुछ लिखा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आजकल हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी 13 बाउल संप्रदाय होते हैं, बाहर की तो हम बात नहीं करेंगे, बहुत विस्तार है। वैष्णव में भी जो लोग तिलक लगाते हैं, विशेषकर बंगाल में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सहजिया लोग होते हैं। गीता में भगवान ने एक जगह कहा है कि जो भी तुम खाते हो करते हो मेरे को करो पहले। क्या है? यद करोषि यदस्नासि यज्ञोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुषि मदर्पणम्। तो ये लोग मछली भी खाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, बोले भगवान ने कहा मेरे को पूछ के खाओ। अरे पत्रम पुष्पम फलम मछलिम थोड़ी लिखा है इसमें। मटन भी खाएंगे भोग लगा देंगे, दारू भी पीते हैं भोग लगा के चरणामृत में, दारू का भी चरणामृत मिलता है। मैं काठमांडू गया था अभी, वहां भैरों का मंदिर है तो भैरों को दारू भोग लगाया जाता है। तो हम भी लाइन में खड़े थे, बोले चरणामृत, हमने कहा क्या है? दारू। काली को दारू भोग लगता है, काली। तो आपने समान भी देखा होगा, बहुत साधु लोग दारू पीते हैं मटन खाते हैं, तो जानबूझ करके ऐसे देवताओं को पकड़ के रखेंगे जो मछली खाने वाले हैं। जानबूझ कर अपना मन खाने को है ना, तो ऐसा देवता पकड़ लो जो खुद ही मटन खाता है, भैरों को पकड़ लो। दारू भैरों लोग पीते हैं, काली पीती है, तो कई साधु आपने देखा होगा रोड में दारू पी के धुत रहते हैं। उसे पूछेंगे क्यों पिया? काली का महाप्रसाद है ना। तो लोग बहाना, एक बहाना बनाते हैं एंजॉय करने का। ये साधुओं की बात हो रही, बाई की बाहर तो खुलेआम लाइसेंस मिल ही रहा है। इसलिए सब जीवों पर दया करनी चाहिए। अब दया कैसे आती है, किसको आती है? दया शब्द का उल्टा करिए, क्या हुआ? याद। भगवान को याद करने से दया आती है। जो व्यक्ति, अरे उधर भेजो उनको, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, अगर वो ये कहे कि मैं परोपकारी हूं, दयालु हूं, मैं लोगों की सेवा करता हूं, तो ये उसकी सेवा में पाखंड होगा। अगर वो खुद भजन नहीं करे, खुद पालन नहीं करता, लेकिन सेवा, समाज सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, बोलता मुझे बड़ी दया आती है, उसकी दया से भला नहीं होगा। किसकी दया से भला होगा? अगर कोई भगवान का भजन करता है, भक्त अगर दया करे, जो भगवान को याद करता है उसी को दया करने का अधिकार भी है, क्योंकि वही सबका भला कर सकता है। इसलिए भगवान को याद करने से दया आती है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है, दूसरे पर दया करने से कभी कभी आदमी खुद फंस जाता है। भागवतम का पंचम स्कंद देखिए, महाराज रघुगुण की कथा और जड़ भरत की वार्ता। महाराज भरत ने उस हिरण को बचाना चाहा, पंचम स्कंद में कथा है ना, कोई बात ना करें, दर्शनार्थी जो भी हैं दर्शन करें, बात मत करें, कथा में बैठ जाओ या चुपचाप दर्शन करिए जाइए। महाराज भरत ने हिरण पर दया की, पानी में से उठा के लाए, मुंह का जाला साफ किया, उसका पालन पोषण किया, अपना घर द्वार जिसलिए छोड़ा था भजन के लिए, उस हिरण के बच्चे की सेवा से महाराज भरत का भजन नष्ट हो गया। हर जगह दया नहीं की जा सकती। अगर डॉक्टर मरीज पर दया करे कि इसको इतना बड़ा फोड़ा हो गया, इसको फोड़ो नहीं, रोए गए, तो होगा ठीक? डॉक्टर की दया क्या है कि भले ही मरीज चिल्लाए लेकिन उसके पस को निकालना है, दुख को दूर करना है। इसलिए भगवान के भक्त भी कभी कभी दया करते हैं लेकिन उसमें कठोरता होती है। भगवान भी दया करते हैं। काली प्रसंग में दशम स्कंद में भगवान की जो ब्रज की लीलाएं हैं उसमें जो भगवान जब काली को दंड देते हैं काली नाग को, तो उस प्रसंग में कथा आती है। भगवान काली के मस्तक को मस्तक बनाचते हैं, उसे लहूलुहान कर देते हैं, तो भगवान कृपा करते हैं काली के ऊपर। तो कभी कभी ऐसी भी दया है जो व्यक्ति को उसमें फंसा देती। एक शायर की कहना नहीं चाहिए मुझे, एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि किसी के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, वो तो अच्छा हो गया लेकिन मुफ्त में मरहम गए। किसी के जख्म पर मरहम लगाने कोई गया लेकिन उसका जख्म तो ठीक हो गया, अपने को जख्म हो गया। इसलिए सबसे बड़ी दया क्या है हमारे वैष्णव संप्रदाय में, भागवत आश्रय में, भागवत धर्म में, सनातन धर्म में, किसी जीव को जो जीव संसार में भटक रहा है, माया में भटक रहा है, उसको पकड़ के जो भगवान के चरणारविंद में लगा दे, इससे बड़ी दया इस भूमंडल में नहीं है। किसी पास प्यासे को आपने पानी पिलाया, पानी पिएगा दोबारा प्यास लगेगी, आपके पिलाए हुए पानी को भूल जाएगा। किसी भूखे को आपने भोजन कराया, पेट भर गया, आपके गुण गाएगा, फिर दोबारा भूख लगेगी, नहीं खिलाओगे फिर बोलेगा बेकार आदमी है। ये टेम्परेरी दया, टेम्परेरी प्रशंसा है। आपने हॉस्पिटल बनाया और किसी आदमी ने चोरी की, चोरी करके भाग रहा था, भागने में टांग टूट गई और आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, आपको दया आ गई, फ्री में इलाज कर दिया, टांग ठीक कर दी, ठीक हो गई, दोबारा चोरी करने लगा, 50% कमीशन टांग ठीक करने वाले को जाएगा, क्योंकि टांग ठीक कराई है दोबारा चोरी कर रहा है। इसलिए सबकी सेवा करना भी खतरा है। इससे सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आप सेवा करिए उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। महाराज भरत यहां पर मृग के चक्कर में क्यों फंसे हैं, उसको पानी से निकाला, मुंह से जाला निकाला, दूध पिलाते, दो चार दिन पाल देते, मृगों के झुंड में छोड़ देते, अपना भजन करते, गले से लगाया, माला नीचे रख दी, उसकी सेवा करने लगे। और मृग ये संसार स्वार्थी है। एक दिन मृगों का झुंड आया, उसने अपनी बिरादरी के लोगों को देखा, राजा का एहसान भूल करके अपने झुंड में चला। यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कभी कभी खूब सेवा आप किसी की करिए, खूब गुण गाएगा, जैसे ही काम पूरा हो गया जाओ लात मार। संसार में भी आप देखते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जैसे बच्चे सेटल हो जाते हैं तो आपने देखा होगा आजकल वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, तो पढ़ाया लिखाया, पढ़ी लिखी लड़की से शादी हुई, बुढ़ापा आ गया तो उसका थूक कौन साफ करेगा, इसे वृद्धाश्रम में मंथली पैसा दे दो और बूढ़े मां बाप को भेज। ये संसार में देखा गया है, प्रैक्टिकल चीज ये है। इसलिए समझदारी ये है कि चुपचाप भगवान का भजन किया जाए। सांसारिक प्रपंच में कुछ भी ज्यादा लाभ नहीं है। आप अभी संसार की भी स्थिति देख रहे हैं, चारों तरफ, परसों आपने न्यूज देखी, इराक में एक कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसकी गर्दन ही उड़ा दी आतंकवादियों, वो देश की सेवा करने पत्रकारिता करता होगा, काट दिया। तो कब क्या हो जाए, कब सांस बंद हो जाए? आजकल तो 5-7 सालों से साइलेंट अटैक आ रहे हैं बहुत। साइलेंट का मतलब नाश्ता आदमी कर रहा है, नाश्ता करते करते सांस बंद हो जाए। अभी श्रील प्रभुपाद जी की अपरेंस डे के दिन 18 तारीख को एक भक्त थे गेस्ट हाउस में, सुबह स्नान करके कपड़े पहन रहे थे, तिलक लगाने जा रहे थे और कपड़े पहनते ही सांस बंद हो गया। तो कब ये सांस बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। इसे सांस के रहते हुए जितना ही सांस से हम भगवान के नाम और उनकी कथा को हम जोड़ सकते हैं, इससे हमारा कल्याण होगा। इससे कली काल में भगवान के नाम का आश्रय, उनकी कथाओं का आश्रय विस्तार से नहीं करें क्योंकि समय का भी अभाव है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान की कथाएं जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, प्रत्येक के लिए। भगवान की कथा और उनका नाम जिस जीव के जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी स्थिति का आभास नहीं कर सकता। भगवान की कथाएं जीवन में स्थितियों का आभास कराती। एक बुढ़िया, गांव में एक मेला था, एक बुढ़िया मेले में गई और मेले में एक दुकानदार शीशा बेच रहा था। तो मेला खत्म होने को था तो बुढ़िया ने दुकानदार से कहा एक शीशा देखा। तो दुकानदार ने कहा ये लो, कितने का है? 10 रुपया, महंगा है, सस्ता वाला देखा। ये लो, 5 रुपये का है। बुढ़िया ने शीशा लिया हाथ में, मुंह देखा, महंगा है। ये लो, 2 रुपये का है। फिर बुढ़िया ने शीशा लिया, मुंह देखा, महंगा है। दुकानदार बोला मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो रहा है, मैं सामान पैक कर रहा हूं, तुमको लेना हो तो लो और नहीं तो आगे बढ़ो। बुढ़िया बोली मुझे शीशा जरूर लेना है। अच्छा ये लो, 1 रुपया बस, इससे सस्ता नहीं। फिर मुंह देखती है, दुकानदार ने कहा तुम शीशे में बार बार मुंह देखती हो और शीशा वापस से कह के कह देती हो कि शीशा महंगा है, तुम क्या देखती हो शीशे में? बुढ़िया ने कहा मेरी उम्र आज 75 साल की है, मैं जब 15 साल की थी तब से मेले में आती हूं, 60 साल से मेले में आ रही हूं और जब मैं 15 साल की थी तो उस समय जब हम शीशा खरीदती थी तो जो शीशे का तुमने 10 रुपये बताया ये 10 में से आता था और जब मैं शीशे में चेहरा देखती थी तो बहुत सुंदर दिखता था और आज ये 10 पैसे की चीज 10 रुपये की हो गई लेकिन मेरा चेहरा एकदम गंदा क्यों दिखता है? तो मैं विचार कर रही हूं कि ये क्या हो गया, शीशा भी महंगा और चेहरा डल, और उस समय शीशा सस्ता था चेहरा चमकता था। तब दुकानदार ने कहा इसमें शीशे का क्या दोष है, जब आप 15-20 साल की थी उस समय आप जवान थी तो चेहरा चमकेगा, शीशा क्या पानी में भी देखोगी चमकेगा? अभी आप 75 साल की वृद्ध हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, आपके गालों में झुर्रियां पड़ गई हैं, शीशा भले ही महंगा हो गया शीशा वही है लेकिन शीशा वही दिखाएगा ना जो हकीकत है। इसलिए भगवान की कथा जीवन में कभी कभी व्यक्ति को अभिमान होता है, मैंने इतनी प्रोग्रेस की, मैं अनुभवी हूं, मैंने पूरी दुनिया देखी, घाट घाट का पानी पिया, लेकिन जब भगवान की कथा सुनता है तो पता लगता है मैं किधर का भी नहीं हूं। कभी कभी लोग कहते हैं मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे सब बच्चे सेटल हो गए, लड़कियां सेटल हो गई, पेंशन मिलती है, ठाट से रह रहा हूं। उसको ये पता नहीं है कि अभी तो तुम ठाट से हो और जैसे ही शरीर छोड़ के उधर बाटा का चप्पल तैयार है पिटाई करने के लिए, भजन तो किया नहीं। ठाट बाट किसके हैं जो भगवान का भजन कर करके आनंद ले रहे हैं। ठाट में कौन है? भगवान का भजन करने वाला ठाट बाट में रहता है। संसार के आदमी की भ्रांति है मैं सुखी हूं, सुखी नहीं है क्योंकि वो भगवान के आश्रित नहीं है। इसलिए कथाएं अपनी स्थिति का आभास कराती कि मैं किधर हूं, कितने पानी में हूं, कितनी मेरी योग्यता है। इसे हमेशा भगवान की कथा रूपी दर्पण में अपने जीवन रूपी स्थिति का आभास करना चाहिए। और भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का नाम इतना सरल नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य करने पर ये नाम मिलता है। और भगवान ऐसी स्थिति हमारी करें कि हम प्रति क्षण भगवान के नामोच्चारण करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, चिंतन करें। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए तो एक ब्राह्मण राम भक्त था राम जी का, तो वो जाप कर रहा था राम नाम का। तो आपको कथा मालूम होगी, जब चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, वो भोग बना रहा था भगवान के लिए, तो महाप्रभु ने कहा कि आप क्या सोच रहे हो? तो ब्राह्मण क्या बोला कि मैं ठाकुर जी की रसोई बनानी थी लेकिन लक्ष्मण जी लकड़ी लेके नहीं आए अभी तक, बैठा है उधर, हो ध्यान कहां गया उसका। हमेशा संसार में कुछ भी काम करें लेकिन चिंतन भगवान का, अपनी मौत का कब कुछ हो जाए, इसे भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी दिमाग गर्म हो जाए, किसी को गाली भी देनी है तो मैं कई दफे बताता हूं, हराम खोर गाली याद करो दो तीन, बहुत गुस्सा आ गया, किसी से निबटना भी है तो दो चार गाली ऐसी याद करनी चाहिए जिसमें भगवान का नाम हो। उसमें एक गाली हमको याद है, हराम खोर, तो हराम खोर में राम का नाम बीच में आता। और ये हराम खोर शब्द चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की वार्ता चैतन्य चरिता में से प्रमाणित है। एक जंगली सुअर ने एक मुसलमान भाई को अटैक किया आक्रमण, तो मुस्लिम लोग सुअर से बहुत चिढ़ते हैं और सुअर को गाली देते हैं, क्या हरामखोर, सुअर को हरामखोर बोलते हैं। तो आक्रमण कर रहा था, जंगली सुअर था, तो मुस्लिम भाई बोला हरामखोर हट, हरामखोर हट, तो सुअर ने छोड़ा नहीं, तो अंत में उस मुस्लिम भाई की मृत्यु हो गई सुअर के मारे जाने से। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बात कहते हैं कि उस सुअर को उस मुस्लिम द्वारा बार बार हरामखोर कहे जाने से और उस हरामखोर में बीच में राम का शब्द होने से वो मुस्लिम बैकुंठ चला गया सनातन, ऐसा कहते हैं। इसलिए भगवान के नाम में सब शक्ति है। कोई व्यक्ति जाने अनजाने में आग में हाथ डाले, अजामिल प्रकरण में बातें बताई, हास में परिहास में मजाक में गुस्से में कैसे भी भगवान का नाम आ जाए, आप कहीं टहल रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, आपका कोई जान पहचान वाला उस रोड से जा रहा है, आप इस रोड से जा रहे हैं, इधर से बोल दो जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक हो, और तुरंत सांस बंद हो गई, सीधे बैकग्राउंड चला जाएगा, ऑफिस तो नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो भी गया तो दुर्गति नहीं हो। तो हंसी मजाक में भी, खेल कूद में भी, गुस्से में भी, कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए। चैतन्य भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि एक भगवान का नाम इतने पापों का नाश कर सकता है जितने पाप मनुष्य फैक्ट्री खोल के बना भी नहीं सकता। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य प्रयास करने पर भी इतने पापों को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। एक नाम इतने पापों का सही कर देता है। इसलिए कली काल में हम लोग भाग्यशाली हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु द्वारा कि भगवान के नाम संकीर्तन की जो मंत्र है, महामंत्र हरि नाम संकीर्तन, और उस मोमेंट से हम लोग जुड़े हैं। श्री प्रभुपाद जी के अनुगत्य में उनकी कृपा से हम लोग इस्कॉन जैसी संस्था श्रीमन मध्व गौड़ी संप्रदाय के अनुगत्य में हम लोग भजन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करते हैं। इसलिए वो लोग भाग्यशाली हैं जो इस मूवमेंट से जुड़े हैं और मूवमेंट के नियमों का पालन करते हैं। तो हमारी सदगति जरूर होगी, दुर्गति नहीं होगी। दोबारा संसार में आना पड़ेगा भी, लेकिन कुत्ता बिल्ली की योनि में नहीं जाएंगे। और मनुष्य को यह प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंहदेव क्या कहते हैं कि मैं जो मेरा भजन करता है मैं उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देता हूं, कहते नहीं? तो मान लीजिए हमारी भक्ति प्रहलाद महाराज जैसी नहीं भी है, 50% भी है, तो 21 का आधा करो, 10.5 पीढ़ी का तो उद्धार होना ही चाहिए। उतना भी नहीं है उसका भी 50% करो तो 5.25 पीढ़ी का तो होना चाहिए। उससे भी गए गुजरे हैं तो 2.5 पीढ़ी का तो होना चाहिए, और गए गुजरे हैं 1 पीढ़ी का तो होना चाहिए, और भी गए गुजरे हैं 1 परिवार का तो होना चाहिए, एकदम निम्न स्तर के गए गुजरे हैं अपना तो होना चाहिए। इतना भजन तो मनुष्य शरीर पाके करना पड़ेगा कि कम से कम हमारा कल्याण तो हो। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्य तेरी तम पुमान भवाब्धि न तरे सात्मा। भगवान कहते हैं 12वें स्कंद में उद्धव से कि मैंने मनुष्य शरीर दिया, साधु संग दिया, प्रसाद खाने को दिया, मंदिर दर्शन करने के लिए दिए, इतनी व्यवस्था करने पर भी अगर कोई जीव इस भव सागर को पार नहीं कर सकता तो आत्महत्यारा है, स आत्मा। तो कोई व्यक्ति किसी एक आदमी का खून कर दे तो उम्र कैद या फांसी की सजा होती है, लेकिन जो व्यक्ति जीव अपनी आत्मा की हत्या करता है उसकी सजा क्या है? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अभी लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं, पता लगेगा अगले जन्म में सांप बन के घूम रहे हैं। सांप का लिपस्टिक देखा? सांप जब रोड पर चलता है उसका लिपस्टिक देखो, बाहर को जीभ निकालते रहते। तो जितना चमचम चमचम है ये सब निकल जाएगी, सारी खाल उधर देंगे यमदूत। इससे अच्छा ये है कि अपनी धुलाई यहीं से करो और भगवान के धाम को प्रस्थान करो, और जितने दिन यहां है सुखी रहो और भगवान का भजन करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय माधव जय जय मुकुंद जय जय माधव जय माधव जय जय मुकुंद जय जय माधव
केशव जय जय नटवर जय जय केशव जय जय नटवर जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल 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 जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय
निताय गौर प्रेमानंदे। दो मिनट का टाइम है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है पूछो। 9:30 का टाइम कन्हैया प्रभु ने दिया था और कन्हैया प्रभु का बहुत धन्यवाद। संडे को लेक्चर देने को कम मिलता है, सही बात बोलना चाहिए। तो आज इत्तेफाक से क्या हुआ, मैं कभी भी कोई सीनियर या हमारे ज्येष्ठ वैष्णव रहते हैं तो मैं क्लास देने में संकोच करता हूं क्योंकि ज्येष्ठ लोग हैं। तो आज नहीं थे तो मैंने हिम्मत यहां पर की और सब ज्येष्ठ लोग बैठे थे। और दूसरा मेरा अवगुण क्या है, मैं खुद क्लास में कभी नहीं आता, मैं इधर उधर ही रहता हूं। तो ये भी मेरा एक अवगुण है कि मैं खुद भागवतम क्लास में नहीं बैठता लेकिन क्लास देने के लिए आ जाता हूं। तो आप लोग हमारा क्लास सुनते हैं तो ये आज के श्लोक पर ही है कि सबसे बड़ी दया हमारे ऊपर आप करते हैं कि हमारे अपराधी होने पर भी आप हमारे अपराध को नहीं देखते हैं। तो मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूं कि ये अपराध हमेशा होते रहे, आप सहन करते रहो। किसी का कोई प्रश्न है, माइक दो। बात सही है, झूठ बोलने से क्या फायदा।
हरे कृष्णा, आपने कहा अगर किसी को गालियां भी देने का है वो ऐसा गाली देने का है कि जिसमें भगवान का नाम है, लेकिन भगवान के नाम गालियां के लिए उपयोग करने का अपराध नहीं होता है क्या प्रभु?
ये तो उनके लिए कहा गया जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो इनकी खोपड़ी उल्टी है। अगर वो भी उल्टा नाम जपा हरि जाना वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि डाकू थे, उन्हें नारद जी से कहा मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा तुम उल्टी खोपड़ी का है, इसे उल्टा नाम जपो। तो राम नाम नहीं कहा, मरा 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 करते करते राम में कन्वर्ट हो गया और वाल्मीकि जी ने ये रामायण ग्रंथ लिख डाला पूरा। तो जो लोगों की बुद्धि ऐसी है, अगर वो इधर से भी अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे इधर ही आता है वो। तो कभी हो हटेगा, जैसे हराम खोर कहा, तो कभी हो हट जाएगा, पीछे का खोर हट जाएगा, शुद्ध राम का नाम उच्चारण करेगा। तो धीरे धीरे उसको इसमें लाने के लिए ये हमारे महापुरुषों की पद्धति है। ऐसा नहीं कि आप राम नाम छोड़ के हराम खोरी बोलो, ऐसा थोड़ी है। ये तो उनके लिए है जिनके मुंह में राम नहीं आता, कम से कम हराम खोर तो बोलो। दिन भर गाली देते रहते हो तो उल्टी सीधी गाली नहीं दिया, ये गाली ये दो, तो इससे कल्याण होगा। अब इसका मतलब थोड़ी कि हरे कृष्णा छोड़ के हराम खोर बोलो, उल्टी खोपड़ी वालों के लिए कहा है। हम तो सब सुल्टी खोपड़ी वाले हैं। और कोई प्रश्न? हाँ अच्छा बोलो।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आपने बताया गंदा ये कचरा वगैरह सब शरीर को बताया था।
हाँ, चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीर, प्रभुपाद जी भी नहीं बताया।
तो दधीची मुनि ने जो हड्डी दिया था, क्या हम वैष्णव भी हमारे शरीर के कुछ पार्ट दे नहीं सकते हैं, किडनी वगैरह?
फिलहाल नहीं दे सकते, टाइम लगेगा बहुत, फिलहाल तो लेने की जरूरत है। दधीची मुनि बहुत बड़े तपस्वी हैं। जैसे भगवान का शरीर चिन्मय होता है, जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर भी चिन्मय होता है। इसलिए भगवान के भक्त के शरीर को कभी भी साधारण शरीर नहीं मानना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन में एक बार वहां के ब्राह्मण लोग उनको मारने चले गए, तो ब्राह्मणों की एक टोली ने विचार किया, क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे थे और जो ब्राह्मण है ये कर्मकांडी होते हैं, तो ब्राह्मणों का वैष्णवों का पहले बहुत विरोध रहा है। बंगाल में भी ऐसा हुआ, नवद्वीप में जब भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद प्रचार करते थे, उस समय भी लोकल ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया भक्त सिद्धांत महाराज का, क्योंकि हमारे आचार्यों ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है और समाज में जो कर्म कांड है इसमें पाखंड भरा पड़ा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एकदम बूढ़े थे, गाल पिचके हुए, मुंह में दांत नहीं, सफेद दाढ़ी, शरीर जर्जर, और ये ब्राह्मणों ने विचार किया आज मार डालेंगे इस बूढ़े को। तो जब ये वृंदावन की राधाकुंड क्षेत्र की बात है, कहीं की बात है, तो जब ये ब्राह्मण की टोली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को मारने के लिए गई तो कुछ देर में वो अदृश्य हो गए। लेकिन जहां से वो अदृश्य हुए वहां पर वो ब्राह्मण आके रुके और वो घर वाले को पूछा जिसका घर सामने था। उसने कहा अभी एक बूढ़ा आदमी इधर से आया था, किधर गया? उन्होंने कहा हमको मालूम नहीं, कोई बूढ़ा नहीं आया। उन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा बूढ़ा आदमी नहीं आया, एक लड़की अभी अंदर को गई है। एक्चुअली वो राधा रानी गोपियों की किंकरी है, वो इस वेश में घूम रहे हैं। वास्तव में उनका रूप कैसा है? किंकरी है, राधा रानी की सहेली है, प्रचार करने के लिए आए। इसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान के पार्षद होते हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए लोक शिक्षा के लिए उनको शरीर मिला हो, लेकिन उनका शरीर साधारण शरीर नहीं होता। उन महापुरुषों के कई प्रसंग आपने सुने होंगे कि फलाने महापुरुष मर गए, उनको कपड़े से ढका दिया, बाद में जैसे कफन उठाए तो फूल ही फूल मिले। सुना कई कई महापुरुषों के बारे में सुना होगा, जिनको हम लोग मायावादी या दूसरे कहते हैं। तो भगवान के भक्त का शरीर साधारण नहीं होता, इसीलिए तो उसके शरीर का स्पर्श किया जाता है। भगवान के भक्त के चरण क्यों छुए जाते हैं? जैसा पांव हमारा वैसा उसका भी है, तो अपने पांव छू लो या अपने पांव को उठा के सर पर लगा लो, उसके पांव में सर रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसका शरीर दिव्य होता है। दिव्य क्यों है? क्योंकि वो भगवान का भजन करता है उस शरीर से। इसे भजन करने वाला शरीर कभी भी साधारण शरीर नहीं होता। हमारी स्थिति भगवान से हम प्रार्थना करें, हम उस मार्ग में हैं, हमको एडमिशन उसमें मिला है। अगर हमारा भजन मार्ग में प्रवेश हुआ है तो जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन अब पढ़ाई बाकी है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कोई वकील बनना चाहता है तो लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि वकील ही बन गया। अभी कई साल पढ़ाई में लगेंगे, फिर बाद में जब पास करके आएगा फिर सीनियर के अंडर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर अगर तन्मयता से सिंसियरली प्रैक्टिस करेगा फिर कहीं अच्छा वकील डॉक्टर बन सकता है। वैसे हम लोगों ने भी ये कह लीजिए एडमिशन हो गया है या फॉर्म भर के दिया है तो कुछ न कुछ चक्कर हमारा भी है, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ प्रभु जी, ये मैं कुछ अपने मन से भी बोल रहा हूं, आप चेक कर लेना, ग्रंथों में भी चेक कर सकते हैं। कई दफे ऐसे ही बोल देते हैं, हम होशियार हैं करके।
हरे कृष्णा प्रभु
जी।
प्रभु आपने बताया वैष्णव को दया भाव प्रस्थापित करना चाहिए और वैष्णव में दया और होती है। अब जो कोई एक दया का जो आपने भावार्थ बताया, तो कोई एक शेतकरी था, फार्मर था, उसका खेती में बहुत सारे अनाज थे, बन गया अनाज में जब कोई जंतु या कीट पड़ गई तो उसे क्या करना चाहिए, दया भाव बताना चाहिए क्या अभी, क्योंकि वो कीट को मार देगा अनाज आएगा तो पाप लगेगा, नहीं मारेगा तो उनका भगवान को भोग नहीं लगाएगा, तो इसमें ऐसी द्वंद्व परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए?
उस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कीट पतंग अगर अभी हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो कीड़े मकोड़े आते हैं, तो जब हम कोई सेवा भगवान के लिए करते हैं, देखो इसका अभिप्राय ये है, चैतन्य महाप्रभु का एक सेवक था ईशान करके, मैं उदाहरण देता हूं आप इसे समझ जाए, वो चैतन्य महाप्रभु का मसाज करता था। तो जब कोई आदमी किसी का मसाज करता है तो उसकी बॉडी से कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, लांगता है ना कभी, या जिसका मसाज करा उसको बोलेगा इधर पलटो सीधे हो, तो मसाज करने वाला प्रैक्टिस कराते रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु का सेवक चैतन्य महाप्रभु का मसाज करता था सेवा। तो मसाज करने के दौरान एक वैष्णव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया, उसने महाप्रभु को प्रणाम किया, कुछ देर बैठा चला गया, फिर एक घंटे बाद आया। वो तो उस वैष्णव ने कहा मैं अभी दर्शन करने आया था, मेरी जप माला छूट गई है सामने, क्योंकि महाप्रभु जब सेवा करवा रहे थे, वो सेवक सेवा कर रहा था तो वो इधर पलटे होंगे, तो ये दर्शन करने इधर से गया तो इसने जप माला नीचे रखी और महाप्रभु को प्रणाम किया दंडवत माला अलग रख के, और तुरंत ही कुछ देर दर्शन करके बाहर आ गया। इतने में महाप्रभु मसाज कर रहे थे तो उन्होंने पलटी ऐसे ली, यानी माला इधर चली गई और महाप्रभु बीच में आ गए और ये मसाज कर रहा था ऐसे। तो उस वैष्णव ने जो महाप्रभु के सेवक हैं उनसे कहा थोड़ा मेरी माला ला दो ना वहां से। तो वैष्णव ने कहा इस समय बीच में महाप्रभु सोए हुए हैं, मैं उनको लांग नहीं सकता। वो वैष्णव ने कहा मैं एक घंटे से देख रहा हूं, तुम 50 बार भगवान को लांग चुके हो तो एक बार मेरी माला लाने के लिए भी लांग लो ना। तब सेवक ने कहा मैं महाप्रभु की सेवा के लिए उनको 100 बार क्या 1000 बार लांग सकता हूं, लेकिन तेरी माला लाने के लिए एक बार भी नहीं लाऊंगा।
हरि बोल।
इसलिए भगवान की सेवा में अगर कोई अपराध भी होता है उस अपराध के साक्षी भगवान है, और गीता का श्लोक इसका प्रमाण है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो उन कीड़ों का भी कल्याण हो जाएगा।
हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।